तमसोर्मा ज्योतिरगमय तमसोर्मा ज्योतिरगमय मृत्युर्मा अमृतं गमय आत्मा के विषय में अनेक प्रकार से जिज्ञासाएं होती हैं। शास्त्र का कुछ ऐसा कथन है कि अति दूरात कोई चीज दूर हो वो भी दर्शन का विषय नहीं बनती जल्दी, अति सामीप्यात बहुत समीप हो वो भी जल्दी दर्शन का विषय नहीं बनती, इंद्रिय व्यवहार इंद्रियों के बीच में नेत्र आदि में कोई दोष हो तद भी उसका दर्शन नहीं होता, मनो अनवस्थानात मन स्थिर न हो तद आंख देखते हुए भी नहीं देखा करती, अति सूक्ष्मयात बहुत सूक्ष्म हो वो भी दर्शन का विषय नहीं बनती है। तो ये सारी ही बातें आत्मा और परमात्मा पर घटती हैं। आत्मा हमारे समीप भी है और दूर भी है जब हम उसको नहीं जानते, तो इससे अधिक और कोई नजदीक भी नहीं है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए जैसे कोई दूरबीन आदि लगाते हैं आंखों में, और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए भी एक शीशा होता है एग्रीकल्चर वालों का, उसको भी वह लगाते हैं। तो ऐसे ही सूक्ष्म चीज को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो अब आत्मा की जब हम शरीर में खोज करने चलते हैं तो ये शंका होती है कि आत्मा इस सारे शरीर में विभू है, व्यापक है, या कि एक देश में ठहरा हुआ है। और वो देश यदि शरीर में है तो कौन सा देश है? आया कि वो अगर एक देशी आत्मा है तो जैसे एक एटम होता, छोटे से छोटा परमाणु होता है, अगर उसी की तरह आत्मा है तो वो तो इस शरीर के किसी भी देश में चिपक कर ठहर जाएगा। तो इतनी सूक्ष्म वस्तु जो चिपक कर ठहरने वाली हो तो वो कैसे उसको समझेंगे, कैसे देखेंगे? यदि आत्मा इस शरीर में विभू है तो शरीर के सब देशों में उसको देखा जा सकता, समझा जा सकता, जाना जा सकता। तो इस जिज्ञासा को लेकर के हम ध्यान और समाधि के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने पर एक तो हमारे शरीर में विज्ञान का सेंटर ये मस्तिष्क है, तो ये तो सबको ही ज्ञात है कि सारी इंद्रियों के व्यापार यहां होते हैं। एक और अव्यक्त सा स्थान है ये हृदय प्रदेश, कि जहां केवल निद्रा की अवस्था में ही सुख दुख की अनुभूति होती है, या जागृत की अवस्था में जिसको एहसास कहते हैं, फीलिंग कहते हैं, वो जागृत की अवस्था में भी होती है। कभी कभी मनुष्य स्वयं कहने लगता है मेरी बात ये समझ में तो आती है पर हृदय गवाही नहीं देता। तो गवाही देने के लिए ये हृदय स्थान है। तो ये कुछ यहां का जो विज्ञान है वो व्यक्त नहीं है, खुला हुआ सा नहीं, स्पष्ट सा नहीं है। और मस्तिष्क का विज्ञान स्पष्ट है। मस्तिष्क का विज्ञान इसलिए स्पष्ट है कि यहां 10 प्रकार की इंद्रियों के व्यापार होते हैं, और इंद्रियों के और मन के जो विषय हैं उन्हीं व्यापारों के लिए, धर्मों के लिए, कार्यों के लिए ये स्थान है। और जीवन का यदि आधार देखा जाए तो ये हृदय में जो धड़कन हो रही है इसको ही हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये धड़कन बंद हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन की जो सरिता है, चेतना का जो प्रसार या विकास है, चाहे सारे देश में है चाहे एक शरीर में है, तो उसको हृदय में ही मानना पड़ेगा। तो जब हम मस्तिष्क में खोज करने चलते हैं तो मस्तिष्क में उसकी अनुभूति नहीं होती है, तो फिर हृदय में जाना चाहिए। वैसे हृदय आदि में ये सब मांस की पेशियां आदि, जिगर है, तिल्ली है, आमाशय, पक्वाशय, तिलिया है, ये ग्रंथि तो है। मस्तिष्क में इसको चीरा फाड़ा जाए तो बीच के सेंटर में जैसे एक अखरोट सा जुड़ा हुआ होता है, बीच में तरल भाग होता है। तो ऐसे स्थानों में आपने उस अपने स्वरूप की खोज करनी है कि अहम अश्मी में ये हूं, ये मेरा स्थान है, ये मेरा स्वरूप है। तो इसके लिए भी बहुत सूक्ष्म सी बुद्धि की आवश्यकता है कि किस देश में अहम अस्मी का बोध हो रहा है, कौन सा वो स्थान है जहां मैं कह सकूं ये यहां मैं हूं, क्योंकि अपने से शरीर को मैं पृथक वर्णन कर रहा हूं। तो वो मेरा स्थान वास्तविक में कहां, उसकी फीलिंग या अनुभूति होती है, उस देश की खोज करनी है। हृदय में डालते हैं शांभवी मुद्रा के द्वारा। शांभवी मुद्रा उसको कहते हैं कि नेत्र खुले हुए हों और ध्यान हृदय में हो। तो उस ध्यान को जब हम बहा करके हृदय में फेंकते हैं, या ध्यान को जब हम हृदय में ले जाते हैं, तो हृदय में हमें ये देखने में आता है कि जैसे मैं अपने आप से अपने आप को भिन्न अलग देख रहा है। ऊपर की सत्ता से, मस्तिष्क के विज्ञान से, मैं अपने स्वरूप को नीचे हृदय में देख रहा है। तो वहां यहां भेदक ज्ञान सा बना रहता है। हृदय में भी चेतना का आवास है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो भी चेतन है और आत्मा भी चेतन है। जब मस्तिष्क से हम देखना चाहते हैं तो उस सर्वव्यापक चेतन सत्ता का अपने से भिन्न हृदय में बोध होने लगता है। जब हम मस्तिष्क के द्वारा देखना चाहते हैं हृदय में, तो हृदय में चेतन सत्ता की अनुभूति होती है अपने से भिन्न, तो उसको वह परमात्मा कहा गया है। यहां तो भेदक ज्ञान की प्रतीति होती है। और जब हम ये देखते हैं कि उस हृदय से ही एक प्रकार से जीवन का संचार सा नीचे ऊपर बह रहा है, प्रतीति हो रही जैसे एक स्रोत में से जल निकल करके चारों तरफ बहा करता है, तो वैसे जीवन का स्रोत ये हृदय प्रदेश है। इससे हृदय की धड़कन के साथ में जीवन सारे शरीर में संचरित सा हो जाता है। तो अब ये क्या आत्मा का ही ये विकास है या कोई और चीज है, क्योंकि आत्मा सबसे सूक्ष्म है शरीर में, जैसे वायु सूक्ष्म है, तेज उस पर गर्मी उष्णता पर चढ़ करके गमन करती जैसी प्रतीत होने लगती है, जैसे गर्मी के मौसम में देहली में गर्म हवा चलती है। तो ऐसे ही चेतन का जो प्रसार सा होता है, तो जीवनी शक्ति प्राण शक्ति, प्राण भी एक प्रकार से जीवनी शक्ति है, क्योंकि प्राण का उद्गम आत्मा और चित्त के संयोग से होता है। तो वो जो उद्गम है वही चेतना का प्रसार माना जाता है। तो चेतना का उद्गम नहीं, उत्पत्ति नहीं है वहां, जो चित्त के प्रदेश में जो आत्मा का संबंध है, उस संबंध से जो गति प्रारंभ होती है, वो गति वह चेतना के संचार को प्रसारित कर देती है। वहां ये प्रतीत होने लगता है कि जैसे चेतन ही फैल रहा है, परंतु वो विकास चित्त का होता है, क्योंकि चेतन में तो इस प्रकार की गति नहीं है जो एक देश से दूसरे देश में विकसित होकर के चली जाए। तो वो एक प्रकार से चित्त की ही वृत्ति विशेष होती है, वो प्राण रूप वृत्ति है, सबसे प्रथम वृत्ति वो है चित्त की। तो उस चित्त की वृत्ति के द्वारा इस चेतना का प्रसार सा फैलाव सा शरीर में बहुत सी प्रतीत होने लगती है। चेतना के संबंध से दो शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, एक ज्ञान का और एक कर्म का। तो जब हम हृदय में ध्यान के द्वारा इसको देखते हैं तो उस प्रदेश के अंदर एक तो कर्म का प्रादुर्भाव होता है और उस प्रादुर्भाव की जो अनुभूति प्रतीति है वो तो ज्ञान के द्वारा होती है, तो वहां ज्ञान का भी प्रादुर्भाव होता है। अब वहां ये शंका सी हो जाती है कि आया ये दोनों धर्म आत्मा के हैं या चित्त के हैं। तो जिसमें परिणाम कर्म है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की बात है, उसमें ये ज्ञान और कर्म पैदा होते हैं, तो वो है चित्त। तो चित्त के देश में एक ऐसे पदार्थ की अनुभूति होनी चाहिए कि जो गोया जिसके आधार ना जिनके एक ऐसे देश की प्रतीति होनी चाहिए जिसमें ये ज्ञान और कर्म दोनों का प्रादुर्भाव दोनों की उत्पत्ति हो। तो वहां ये भ्रांति सी हो जाती है कि ये ज्ञान चेतन का धर्म है या कर्म चेतन का धर्म है। जब ज्ञान और कर्म दो आत्मक वृत्तियां होती हैं तो वृत्तियां तो चित्त की माननी पड़ेगी क्योंकि चित्त में परिणाम कर्म है। तो ज्ञान के द्वारा और कर्म के द्वारा वहां आत्मा की अनुभूति होने लगती है। वो ही एक ऐसा स्थान है जहां ज्ञान और कर्म के द्वारा आत्म साक्षात्कार होने लगता है। तो वहां यह प्रतीत होने लगता है जैसे चेतन के ही ये दोनों धर्म हो, ज्ञान और कर्म, क्योंकि जड़ में तो ज्ञान और कर्म होता नहीं है। पत्थर यहां पड़ा है उसमें न कर्म कोई कर्म उत्पन्न हो रहा है न ज्ञान उत्पन्न हो रहा। तो वहां ये भ्रांति हो जाती है कि आया ये धर्म आत्मा के हैं चेतन के हैं कि अचित्त के हैं। तो एक प्रकार से वहां अब हमारे तो ये आज बाबू पूछ रहे थे कि आपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, आत्मा को देख लिया, भगवान को देख लिया। तो हमने कह दिया हां देख लिया। अब वो देखने की बात, अब इनको हमने एक दृष्टांत दिया था कि जैसे तुम्हारे मन के अंदर निरंतर शांति का प्रभाव बहता रहता है और आपको एक बड़ा सुख सा आनंद सा अनुभव होने लगा, तो आप उस अवस्था को अनुभव में ला रहे हैं पर उस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकते कि वो शांति का आकार प्रकार रंग रूप स्थिति कैसा उसका स्वरूप है। शांति का अनुभव करते हैं उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उस प्रदेश में जहां शांति का साम्राज्य है उसका भी हम वहां जो आत्मा की अनुभूति है, एक प्रकार से शांति और आनंद आप आत्मा के ही धर्म मान लो, क्योंकि कुछ तो धर्म मानोगे ना, चाहे वो संयोग से धर्म उत्पन्न होते हैं पर थोड़ी देर के लिए थोड़ी बात से आप आत्मा के ही धर्म या गुण आनंद और शांति मान लें। तो जहां से ये आनंद और शांति बह रहे हैं उत्पन्न हो रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं वो है तुम आत्मा का स्वरूप या आत्मा का स्थान या आत्मा को ही समझ लो। आप हृदय में एक इस प्रकार की भावना पैदा कर लो जैसे कि सूर्य है चमकता हुआ, उसमें से किरणें निकल करके बह रही हैं और आसपास के देश को प्रकाशित करती है। तो इसी प्रकार यदि आप आत्मा को ज्योति रूप समझ रहे हैं तो सूर्य के समान हृदय में उसको ज्योति के रूप में समझ लो और उससे किरणें निकल करके सारे शरीर को संचालित सा क्रियाशील सा रूपशील सा बना रही है। जैसे सूर्य की किरणें निकल करके सारे आसपास के पदार्थों को दिखाती हैं, तो जब ज्योति के रूप में आप उसकी उपासना करना चाहते हैं देखना चाहते हैं तब तो सूर्य की आप कल्पना सी कर दो, जैसे सूर्य सारे आसपास के लोक को ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है ऐसे तुम्हारा आत्मा यहां से सारे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। एक तो ये क्रम है। दूसरा अगर प्राण के द्वारा आप उसको समझना देखना चाहते हैं कि जैसे कोई चीज स्रोत से निकल करके बहती है, एक तो बहता बहा जो करता वो तरल पदार्थ बहा करता जैसे जल बह करके चलता है, सूर्य की किरणों में इस प्रकार का वाहन नहीं होता जैसे कि जल में द्रवित होते से उसमें वाहन होता है, और वायु का भी इस प्रकार वाहन नहीं होता, वायु का त्रियक रूप गमन होता है वाहन, और किरणों का इस प्रकार त्रियक किरणें सी भी जाती है, और ये जो जल का वाहन है ये तरल सा होकर के बहता ऊपर को जैसे उबल करके चलने लगता है, तो इस प्रकार ये तीन रूपों में आत्मा के रूप की प्रतीति होने लगती है, बहने के रूप में, प्रकाश के रूप में, प्राण के रूप में। तो इन तीन साधनों के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, और वो स्थान आपको हृदय में ही हृदय सेंटर मानना पड़ेगा, मध्य भाग मानना पड़ेगा, जीवनी शक्ति यही आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप उसको प्रकाश के रूप में कल्पना कर लो, चाहे प्राण के रूप में कल्पना कर लो, और चाहे बहन के रूप में, चाहे शब्द के रूप में कल्पना कर लो, पर वो कल्पना ऐसी हो, स्थिरता हो उसमें। जल भी बहकर चलता है, पर जल के बीच में एक स्थान ऐसा होता है जो आप नहीं बहता, आप खड़ा रहता है, सूर्य में भी एक स्थान ऐसा आप खड़ा रहता है, उसकी किरणें बहती रहती है, ऐसे वायु में भी एक ऐसा स्थान हृदय का मानना पड़ेगा, वो आप बहने लगती है, परंतु जिससे निकल के बह रही वो चीज अपने आप खड़ी रहती है, तो ऐसी एक चेतन सत्ता इन तीनों के बीच में आपको माननी पड़ेगी जो स्थिर होकर के खड़ी रहती है, बाकी प्राण के रूप में, तेज के रूप में, जल के रूप में उससे चीजें बहती प्रतीत होने लगती है, और उसके दर्शन की और उसके ध्यान की बातें बतलाई गई हैं। अब आप सावधान होकर के अभ्यास प्रारंभ करें, पहले तो आप ये अनुभव करें कि जैसे मेरी ओर से आपके अंदर कोई विल पावर, कोई शक्ति से प्रवेश कर रही है, और आप अपना और मेरा संबंध बना लें, ताकि उस शक्ति के द्वारा आप अपने अंदर कुछ देख सकें, जैसे बाहर से सूर्य की किरणें आई कहीं पड़ी हैं तो मेरी आंखें उस पदार्थ को देख सकेंगी, तो इस प्रकार मुझे अगर आपको अपने अंदर आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है तो आप मेरे आत्मा को अपने अभ्यास का, ज्ञान का, ध्यान का विषय बना लें, मेरे अंदर भी वैसा ही आत्मा वर्तमान है। अगर आप अपने से भिन्न आत्मा के स्वरूप को देखना चाहते हैं तब तो मेरे आत्मा को आप ध्यान का विषय बना लेंगे, और ये तो होगा उन्मुनि मुद्रा के द्वारा। उन्मुनि मुद्रा कहते नेत्रों से कोई चीज देख करके, नेत्र खुले हुए हैं और आपका ध्यान अंदर है। शांभवी मुद्रा उसको कहते हैं, नेत्र खुले हुए आपका ध्यान हृदय में है। तो इन दोनों मुद्राओं के द्वारा नेत्र खुले हुए आत्मा को अगर ज्ञान का विषय बनाते हैं तो मस्तिष्क को बनाएं, और नेत्र खुले हुए हैं अगर आप हृदय को लक्ष्य बनाएं तो वहां शांति मुद्रा के द्वारा आत्मा की अनुभूति हो जाएगी।